अम्मा जगदम्मा, याद बहुत हमें आती हो। मीठी मम्मा जगदम्मा, याद बहुत हमें आती हो। ऐसा लगता आज भी, ऐसा लगता आज भी वही ममता प्यार लुटाती हो। मीठी मम्मा जगदम्मा, याद बहुत हमें आती हो। जीवन से मम्मा तुमने जीने का ढंग सिखाया है। एक कन्या बनी जगदम्मा, क्या कमाल दिखलाया है। नारी बने नारायणी, तुम जीवन से सिखलाती हो। मीठी मम्मा जगदम्मा, याद बहुत हमें आती हो। मीठी मम्मा जगदम्मा, याद बहुत हमें आती हो। शिव बाबा के शिक्षाओं की माँ साक्षात मूरत थी। सर्वशक्तिया सर्व गुणों की तुम साकार सूरत थी। दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती, अम्मा तुम्ही कहलाती हो। मीठी मम्मा जगदम्मा, याद बहुत हमें आती हो। मीठी मम्मा जगदम्मा, याद बहुत हमें आती हो। गूंज रही है शिक्षाएं, हुक्म हुक्म चला रहा। करण करावन हार स्वामी, कर रहा वही करा रहा। हर घड़ी अंतिम घड़ी है, तीव्र पुरुषार्थ सुनाती हो। मीठी मम्मा जगदम्मा, याद बहुत हमें आती हो। मीठी मम्मा जगदम्मा, याद बहुत हमें आती हो। ऐसा लगता आज भी वही ममता प्यार लुटाती हो। मीठी मम्मा जगदम्मा, याद बहुत हमें आती हो। मीठी मम्मा जगदम्मा, याद बहुत हमें आती हो।
ओम शांति। आज का दिन विशेष दिन हमारे यज्ञ के इतिहास में है। जब तक मम्मा बाबा साकार में थे, चाहे बड़ी दादियां थी, भाई बहने थे, जुड़े तो दोनों से थे, मम्मा से भी बाबा से भी, फिर भी सब अधिक मम्मा की तरफ झुकाव था। बहुत से भाई बहन मम्मा के जाने के बाद हिल भी गए। हालांकि मम्मा की अपनी धारणा, अगर कोई मम्मा को कहते थे मम्मा हमें आपकी बहुत याद आती है, अगर हमें कोई कहे बहन जी आपकी बहुत याद आती है, तो हम शायद बहुत खुश होंगे। और मम्मा क्या कहती थी, मम्मा कहती थी चमकीली माँ को याद करो, हम सब की माँ चमकीली माँ है। ये मम्मा का बड़ा फेवरेट पेट वर्ड था, चमकीली माँ को याद करो। दूसरा, बाबा के अव्यक्त होने के बाद बाबा के मधुर महावाक्यों में से हम सब ने कई वरदान निकाले हुए हैं, कई उसमें से बातें निकाली हैं जो लिखते रहते हैं, लेकिन जहां तक मुझे ध्यान आता है, हमारे यज्ञ का एक स्लोगन प्योरिटी इज रॉयल्टी, ये मम्मा का फेवरेट स्लोगन था। मम्मा स्वयं भी पवित्रता की प्रतिमूर्ति थी, और भाई बहनों का अनुभव ये होता था, जो नए नए भाई बहन निकलते थे उनका अनुभव भी था और एक दूसरे को प्रेरणा देते थे। कहते थे बस एक बार मम्मा से मिल लो, आपकी पवित्रता की धारणा पक्की हो जाएगी। तो मम्मा में ऐसी शक्ति थी जो सबको पवित्र बनने के लिए प्रेरणा तो देती ही थी, लेकिन प्रेरणा के साथ साथ शक्ति भी देती थी। समझते थे हम मम्मा से मिले हैं, मम्मा की गोद ली है, अब तो हमें पवित्र रहना ही रहना है। बाबा ज्ञान सागर है, शिव बाबा भी और ब्रह्मा भी, दोनों ज्ञान सागर है। इसलिए बाबा की मुरलियां अगर हम सुनते हैं तो सागर की भिन्न भिन्न लहरें मुरलियों में हैं। कभी बाबा परम धाम की बात सुनाते हैं, कभी सत्युग की सुनाते हैं, कभी देवता बनने की प्रेरणा देते हैं, लेकिन मम्मा की जो मुरली रही, मम्मा की मुरलियां विशेष रूप से एक ही विषय पर, एक ही टॉपिक पर होती थी। अगर आज मम्मा सर्वव्यापी की बात सिद्ध कर रही है, तो मम्मा सर्वव्यापी के ऊपर ही सुनाएगी। अगर लक्ष्य की बात कर रही हैं, तो लक्ष्य की ही बात मम्मा सुनाएगी। और आज जो मम्मा की मुरली है, उसमें मम्मा ने कौन सा टॉपिक लिया होगा? आज है ड्रामा। ये सृष्टि एक नाटक है, ड्रामा है, इसमें हमें कैसे चलना है। तो हम सुनेंगे मम्मा के मधुर महावाक्य। मुरली का सार है, पवित्रता रूपी गुण को धारण कर डायरेक्टर के डायरेक्शंस पर चलते रहो तो देवताई किंगडम में आ जाएंगे। ये मुरली रिवाइज कोर्स में 1965 की मुरली है। ओम शांति। इस दुनिया को नाटक भी कहते हैं, ड्रामा कहो, नाटक कहो, खेल कहो, बात एक ही है। नाटक जो होता है वह एक ही कहानी होती है, उसमें बहुत बाय प्लॉट्स बीच में दिखाते हैं, लेकिन स्टोरी एक ही होती है, एक स्टोरी है, उसमें कई रेफरेंस होते हैं। इसी तरह से ये बेहद वर्ल्ड ड्रामा है, इसको नाटक भी कहा जाता है, जिसमें हम सब एक्टर्स हैं। अभी हम एक्टर्स हैं तो एक्टर्स को नाटक का पूरा पता होना चाहिए कि किस स्टोरी पर ये शुरू होता है, हमारा ये पार्ट कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक पूरा होता है। फिर उसमें समय प्रति समय किस किस एक्टर्स का कैसे कैसे पार्ट होता है और उसका डायरेक्टर क्रिएटर कौन है और इस नाटक में हीरो हीरोइन पार्ट किसका है, इन सब बातों का नॉलेज होना चाहिए। खाली नाटक कहने से तो काम नहीं चलेगा ना। नाटक है तो नाटक के हम एक्टर्स भी हैं। अगर कोई ड्रामा का एक्टर है और हम उनसे पूछें कि इसकी क्या स्टोरी है, ये कहां से शुरू होता है, कहां पूरा होता है, और वो ये कहे हमें मालूम नहीं, तो इसको क्या कहा जाएगा? कहेंगे इसको इतना भी पता नहीं है, कहते हैं मैं एक्टर हूं। एक्टर को तो सब बातों की जानकारी होनी चाहिए ना। नाटक शुरू है तो उसका अंत भी जरूर होगा, ऐसे नहीं शुरू हुआ है तो चलता ही रहेगा। तो इन सब चीजों को समझने का है। इस बेहद के नाटक का जो रचयिता है वो जानता है कि किस तरह से इस नाटक की शुरुआत हुई है, इसमें मुख्य मुख्य एक्टर्स कौन हैं, और सभी एक्टर्स में हीरो हीरोइन का पार्ट किसका है। ये सब बातें बाप समझा रहे हैं। ये सब नॉलेज जो रोज क्लास में आते और सुनते हैं वो समझते हैं। पहले तो मम्मा ने कहा ये समझना चाहिए, जानना ही चाहिए, लेकिन अब इस बात को समझेगा कौन? क्योंकि ड्रामा का ज्ञान सुनकर बहुत से भाई बहन मूंझ भी जाते हैं। तो मम्मा ने कहा कि जो रोज क्लास में आते हैं और सुनते हैं वह समझते हैं। उनको मालूम है कि इसका पहला डायरेक्टर और क्रिएटर कौन है। क्रिएटर कहेंगे, क्रिएटर कौन? सुप्रीम सोल, परमपिता परमात्मा को। लेकिन वह भी एक्टर है, सुना, ध्यान देना, वो क्रिएटर भी है और एक्टर भी है। उनकी एक्टिंग कौन सी है? अब कोई मूंझ नहीं जाना कि आज तो मम्मा ने कह दिया शिव बाबा भी जो है वो एक्टर भी है, वो तो क्रिएटर है। लेकिन मम्मा ने स्पष्ट किया है उनकी एक्टिंग कौन सी है, डायरेक्टरपन की। वह एक ही बार आकर एक्टर बनता है, पूरे कल्प में एक ही बार। अभी डायरेक्टर बन करके एक्ट कर रहा है। वह कहते हैं इस नाटक की शुरुआत मैं करता हूं। कैसे? जो प्यूरिफाइड सत्युगी दुनिया है, जिसको नई दुनिया कहते हैं, न्यू वर्ल्ड में मैं क्रिएट करता हूं। अभी आप सब जो भी पवित्रता को धारण करके डायरेक्टर के डायरेक्शन पर चल रहे हो, वह सभी एक्टर्स अभी प्यूरिफाइड बन रहे हैं। फिर इन्हीं एक्टर्स के द्वारा अनेक जन्मों का चक्कर चलना है। ये बाप ही समझाते हैं, अभी पवित्र हुए मनुष्य दूसरे जन्म में देवताई किंगडम में जाएंगे। पवित्रता का कितना महत्व है, पवित्रता के आधार से ये सृष्टि कैसे रची जाती है, देखो मम्मा को कितना क्लियर है। वह किंगडम दो युग सूर्यवंशी चंद्रवंशी रूप में चलती है, फिर वह सूर्यवंशी चंद्रवंशी एक्टर्स का पार्ट जब पूरा होता है तब फिर थोड़ा नीचे गिरते हैं, वाम मार्ग में आते हैं, फिर दूसरे धर्मों का टर्न आता है। इब्राहिम, बौद्ध, फिर क्रिश्चियन, ये सभी धर्म स्थापक नंबर वार आकर के अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। तो देखो नाटक की स्टोरी कहां से शुरू हुई, कहां से शुरू हुई भाई? सत्युग से। लेकिन रचना कब से शुरू होती है? संगम युग से। तो वास्तव में देखा जाए शुरुआत संगम ही है, लेकिन जो भगवान ने इस समय रचना रची उसका पाठ सत्युग से शुरू होता है। नाटक की स्टोरी कहां से शुरू हुई, कहां पूरी होती है, उसके बीच में ये दूसरे दूसरे बाय प्लॉट्स कैसे चलते हैं, ये सभी वृतांत बैठ करके समझाते हैं। अभी ये नाटक पूरा होने पर है, वह नाटक तो 3 घंटे में पूरा होता है, और इस नाटक को, इसको 5000 वर्ष लगता है। बाकी उसमें थोड़े वर्ष हैं, बस अभी उसकी तैयारी है। अभी ये नाटक पूरा हो करके फिर रिपीट होगा, तो ये सारा वृतांत बुद्धि में होना चाहिए। अब ये जो पूरा नाटक का ज्ञान है, ये जो समझ है, इसको क्या कहेंगे? ये सारा वृतांत बुद्धि में होना चाहिए, इसी को ज्ञान कहा जाता है। अभी देखो बाप आकर के नया भारत, नई दुनिया बना रहे हैं। भारत जब नया था, इस बात को सब जरा अलर्ट होके ध्यान से सुनना, वर्तमान में उस दुनिया में लौकिक में बहुत सी बातें चल रही हैं। अगर ये ज्ञान समझ आ जाए तो आप फिर देखो, ज्ञान समझ आने से कितना हर बात का हल हो जाता है, और मम्मा की मुरलियां कितनी स्पष्ट हैं इसके लिए। भारत जब नया था तो इतनी बड़ी दुनिया नहीं थी, आज पुराना भारत है तो दुनिया भी पुरानी है। बाप आकर के भारत जो अविनाशी खंड है, प्राचीन अपना देश है, अभी देश कहते हैं क्योंकि दूसरे देशों में ये भी एक टुकड़ा हो गया है। समझ में आ रही है ये बात? जैसे अन्य अन्य देश हैं, अन्य अन्य खंड हैं, तो अब उनमें से भारत भी एक पार्ट है, एक टुकड़ा है, परंतु वास्तव में सारी वर्ल्ड, सारी पृथ्वी पर, सुनिए ध्यान से, सारी वर्ल्ड, सारी पृथ्वी पर एक भारत का राज्य था, जिसको कहा जाता था प्राचीन भारत। प्राचीन भारत क्या था? यूं भी इतिहासकार कहते रहते हैं हमारा भारत कहां तक, वो अफगानिस्तान काबुल तक था, ये था। और मम्मा ने देखो इसको कैसे क्लियर किया है, इस पर कोई अच्छा सा मनन करे तो कितनी गहरी बात मम्मा ने हम बच्चों को समझाई है। वास्तव में सारी वर्ल्ड, सारी पृथ्वी पर एक भारत का राज्य था, जिसको कहा जाता था प्राचीन भारत। उस समय का भारत गाया हुआ है, सोने की चिड़िया, जब सारे विश्व में केवल एक भारत था, वो था सोने की चिड़िया। सारी पृथ्वी पर केवल भारत का ही कंट्रोल था। सुन रहे हैं सब ध्यान से? सारी पृथ्वी पर भारत का ही कंट्रोल था। एक राज्य था, एक धर्म था, उस टाइम पूरा सुख था। अभी कहां है? अभी कहां है? इसलिए बाप कहते हैं इसका डिस्ट्रक्शन करके फिर एक राज्य, एक धर्म और प्राचीन वही नया भारत, नई दुनिया बनाता हूं। समझा? गहरी बात है, मम्मा ने ये समझाकर पूछा है। समझा? उस दुनिया में कोई दुख नहीं, कोई रोग नहीं, कभी कोई अकाल मृत्यु नहीं। तो ऐसी लाइफ किस किस को चाहिए? ऐसी लाइफ, क्या बात है! सबने हाथ क्यों नहीं उठाया? माताएं सुन रहे हैं ना सब ध्यान से, कितनी बड़ी, कितनी गहरी बात मम्मा हम सबको समझा रही है। आप देख लीजिए, 64 से पहले की मुरलियां हैं और मम्मा के पास ज्ञान की गहराई की कितनी क्लैरिटी थी, कितना मम्मा को हर चीज क्लियर है। फिर से सुनिए, उस दुनिया में कोई दुख नहीं, कोई रोग नहीं, कभी कोई अकाल मृत्यु नहीं। तो ऐसी लाइफ पाने के लिए पुरुषार्थ करो। मुफ्त में थोड़ी ही मिलेगी ऐसी जीवन, मुफ्त में नहीं मिलेगी, पुरुषार्थ चाहिए। कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। बीज बोएंगे तो पाएंगे, बोएंगे नहीं तो पाएंगे कैसे? तो ये कर्म क्षेत्र है। इस क्षेत्र में अब बीज कैसे बोना है? इस क्षेत्र में कर्मों से बोना है। कर्म क्षेत्र है, कर्म से बोना है। जो कर्म हम बोते हैं वो फल पाते हैं। मम्मा को कर्मों की कहानी बहुत क्लियर थी। कितना सावधान हम बाबा के बच्चों को होना चाहिए। हम बाबा के बच्चे भी बुरा नहीं मानना, कर्मों के प्रति बहुत बहुत लापरवाह रहते हैं। कुछ भी आया बोल लेते हैं, कुछ भी आया कर लेते हैं। लेकिन मम्मा बहुत बहुत सावधान थी, बोलने में भी करने में भी। तो आज मम्मा ने यही कहा है, जो कर्म हम बोते हैं वो फल पाते हैं। बाप कर्मों का बीज बोने का सिखला रहे हैं, जैसे खेती करना सिखलाते हैं ना, कैसे बीज डालो, कैसे उसकी संभाल करो, उसकी भी ट्रेनिंग देते हैं। तो बाप आकर के हमारे को कर्म के खेत के लिए, कर्मों को कैसे बोएं, उसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं कि अपने कर्मों को ऊंचा बनाओ, अच्छे बीज डालो, कर्म ऊंचे करो। दो शब्द हैं, कर्म ऊंचे करो, फिर अच्छे बीज डालो तो फल अच्छा मिलेगा। बीज कौन सा हुआ? कर्म अच्छे ऊंचे करो, इसका बीज कौन सा है? कर्म हमारा भावना संकल्प से ही शुरू हो जाता है। मैंने कुछ कहा या नहीं कहा, लेकिन मेरे मन में इस समय भाव कौन सा है, संकल्प कौन सा है, वहीं से कर्म शुरू हो गया, वहीं से फल भी शुरू हो गया। अच्छे बीज डालो तो फल अच्छा मिलेगा। जब कर्म अच्छा होगा फिर जो बोएंगे, कर्म अच्छा होगा जो बोएंगे उसका फल अच्छा मिलेगा। अगर कर्म रूपी बीज में ताकत नहीं होगी। समझ में आई? ताकत कैसे आएगी कर्म? हम ऐसे सिंपली कर लेते हैं, हाँ ठीक है, बोलना है कुछ भी बोल दिया, खाना है कुछ भी खा लिया, ऐसा नहीं है। अगर मम्मा को देखते ना, मम्मा भोजन कैसे करती है, मम्मा चलती कैसे है, एक कदम भी जो मम्मा उठाती थी, अब अगर मैं याद करती हूँ, बड़ी सावधानी से उठाती थी। सावधानी मतलब ये नहीं कि मैं गिर ना जाऊं, लेकिन दिखाई देता था कि मम्मा जैसे बाबा की याद में कर्म को उठा रही है, एक एक कदम उठा रही है बाबा की याद। रहती शांत थी, बोलने का तो काम ही नहीं है। हाँ, कोई आया, कुछ पूछा, कोई बात है, कोई किसी की शिकायत भी करेगा, मम्मा कहेगी खुद को पहले देखो। दूसरे का वर्णन करना तो कितना आसान है। जब कर्म अच्छा होगा, फिर जो बोएंगे उसका फल अच्छा मिलेगा। अगर कर्म रूपी बीज में ताकत नहीं होगी, कर्म बुरे बोएंगे तो फल क्या मिलेगा। ये जो खा रहे हो, अभी जो हम कर्म कर रहे हैं, फिर रो रहे हो, अच्छा नहीं किया होगा तो रोना पड़ेगा। जो खाते हो उसमें ही रो रहे हो, दुख और अशांति, कुछ ना कुछ रोग आदि खिटखिट होती ही रहती है। अंडरलाइन कर लो मम्मा का ये महावाक्य। हमारी बीमारियों का कारण, भले ये बाहरी कारण भी हैं, पॉल्यूशन है, किसी का किसी प्रकार का सिस्टम ठीक नहीं है, कुछ भी है, लेकिन उसके पीछे भी क्या है? मेरे संकल्प, मेरा भाव, इस पर हम काम करें। हर घड़ी मेरा भाव भावना श्रेष्ठ रहे, संकल्प श्रेष्ठ रहे। कुछ ना कुछ रोग आदि खिटखिट होती ही रहती है, सब बातें मनुष्य को दुखी करती हैं ना, इसलिए बाप कहते हैं अभी तुम्हारे कर्मों को मैं ऊंची क्वालिटी का बनाता हूं। जैसे बीज भी उस क्वालिटी का होगा तो उस क्वालिटी को बोएंगे तो उसका अच्छा फल निकलेगा। अगर बीज अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा तो फिर अच्छी क्वालिटी का फल भी नहीं मिलेगा। तो हमारे कर्म की भी अच्छी क्वालिटी चाहिए ना। काम बस कर दिया, छुटकारा हुआ, नहीं, क्वालिटी वाइज मेरा कर्म कैसा। भोजन भी खाया, खा लिया, बस पेट भर गया, नहीं, बाबा की याद में खाया, बाबा को साथी बनाकर खाया, कितना अटेंशन मम्मा बाबा ने दिया होगा। है ना, हमारे हिस्ट्री हॉल में बाबा का चित्र भी है, बाबा कैसे याद में रह के भोजन खा रहे। तो अभी बाप हमारे कर्म रूपी बीज को अच्छी क्वालिटी वाला बनाते हैं। अंडरलाइन कर ले मोटा मोटा, मुझे अपने कर्म की क्वालिटी को अच्छा बनाना। कर्म नहीं करना है, लेकिन कर्म की क्वालिटी वो पावरफुल होनी चाहिए। तो वह श्रेष्ठ क्वालिटी का बीज अगर बोएंगे तो श्रेष्ठ फल मिलेगा। तो अपने कर्मों का जो सीड है वह अच्छा बनाओ और फिर बोना सीखो। पहले क्वालिटी अच्छी करो, इम्प्रूव करो, फिर कैसे बोएं वो भी सीखो। तो ये सभी चीजों को समझ करके अभी अपना पुरुषार्थ करो। कर्म क्या है, फल क्या है, बीज क्या है, पहले ये हम समझें, फिर मम्मा ने कहा फिर पुरुषार्थ करो। अच्छा, अभी 2 मिनट साइलेंस। साइलेंस का मतलब, आज देखो मम्मा ने कितनी अच्छी डेफिनेशन दी है, ये तो हम कह देते हैं कई बार, अब मुरली पूरी हुई, क्लास पूरी हुई, कोई बात है, कोई मीटिंग शुरू होती है, खत्म होती है, हम कहते हैं 2 मिनट साइलेंस में बैठो। तो ऐसा चुप होकर हम बैठ जाते हैं, मगर साइलेंस किसको कहते हैं? साइलेंस में हमारी स्थिति क्या होनी चाहिए? अभी 2 मिनट साइलेंस। साइलेंस का मतलब आई एम सोल। केवल ऐसा चुप होके नहीं बैठना है, साइलेंस में बैठते हैं तो ऐसे नहीं बैठना, अंदर पता नहीं क्या चल रहा है। साइलेंस माना मैं आत्मा हूं, आई एम सोल। फर्स्ट साइलेंस पीछे टॉकी में आते हैं। अब बाप कहते हैं फिर चलो। कहां चलो? फिर चलो कहां? साइलेंस वर्ल्ड में। तो साइलेंस, चलो साइलेंस वर्ल्ड, तो साइलेंस, शांति अपना स्वधर्म है। उस साइलेंस में चलने के लिए कहते हैं। समझ में आया? केवल यहां बस मैं बोल नहीं रही तो मैं साइलेंट नहीं हूं, इसको साइलेंस नहीं कहेंगे। लेकिन अंदर से मेरी कॉन्शियस कौन सी है? मैं सचमुच एकदम शांत हूं। सब जरा अलर्ट होके बैठो ना, जहां जहां भी बैठो अलर्ट होके बैठो। 1 सेकंड ये अभ्यास करके देखो, सचमुच मैं एकदम साइलेंट शांत स्वरूप आत्मा। ये अभ्यास बार बार करें। चलो साइलेंस वर्ल्ड, तो साइलेंस शांति अपना स्वधर्म है। उस साइलेंस में चलने के लिए कहते हैं। सुना? जब कहते हैं ना चलो साइलेंस में बैठते हैं, तो मम्मा ने बताया कौन सी साइलेंस में जाना है, वो अपने परम धाम की। उस साइलेंस में चलने के लिए कहते हैं। इस देह का अब स्थिति, मनोस्थिति कौन सी हो, इस देह का और देह सहित देह के संबंध की अभी अटैचमेंट छोड़ो, उससे डिटैच हो जाओ। सन ऑफ सुप्रीम सोल, अब मुझे याद करो और मेरे धाम में आ जाओ। साइलेंस की डेफिनेशन मिली? सन ऑफ सुप्रीम सोल, और अब मुझे याद करो, मेरे धाम में आ जाओ। ये अभ्यास हमें करना है। साइलेंस माना 1 सेकंड में परम धाम में पहुंच जाओ, बाबा के सामने प्रेजेंट हो जाओ, बस कोई और संकल्प नहीं। आज मम्मा का दिन है, हम सब भाई बहनें ये प्रयास करें, जहां तक हो सके सारा दिन साइलेंस में रहें, बार बार साइलेंस में जाने का अभ्यास करें। तो अभी चलने का ध्यान रखो, अभी आने का नहीं ख्याल करो। समझा? चलने का, कहां चलने का? ये इस दुनिया में जो चल रहे हैं ये चलने की बात नहीं है। अभी चलने का ध्यान रखो, अपने घर चलना है। अभी आने का नहीं ख्याल करो। अंत मति सो गति, अभी कोई में भी अटैचमेंट नहीं। चलने का मतलब कहीं भी किसी में भी कोई भी प्रकार की अटैचमेंट नहीं। अभी तो शरीर की अटैचमेंट भी छोड़ दो, इस देह के साथ भी अटैचमेंट ना रहे। समझा? अब मम्मा ने पूछा समझा? साइलेंस का अर्थ अटैचमेंट रखना या छोड़ना? साइलेंस माना एकदम डिटैच, अपनी देह से भी डिटैच। ऐसी अपनी धारणा बनाने की है। अच्छा, पहले भी मम्मा ने ऊपर कहा ना, दो मिनट साइलेंस, फिर साइलेंस क्या है समझाया, और फिर मम्मा ने कहा ऐसी अपनी धारणा बनाने की है। अच्छा, अब बैठो साइलेंस में। माताएं सब अलर्ट हैं, अलर्ट होके बैठो, आंख खोल के देखो, मम्मा बाबा आज हमें सब शक्ति दे रहे हैं। मम्मा सबको दृष्टि दे रही है, शक्ति दे रही है। बैठो साइलेंस में, चलते फिरते भी साइलेंस। अब बैठ नहीं जाना है, कोई सोचेगा आज तो क्या साइलेंस, तो बस बैठ जाए ना। चलते फिरते भी साइलेंस। अब सुनो एक बात ध्यान से, बोलते भी साइलेंस। बोलते हुए साइलेंस कैसे होगा? बोलते भी साइलेंस, जैसे हम योग में बैठे होते हैं, किसी को कुछ कहना भी हो तो फिर कैसे बोलते हैं? धीरे से बोलते हैं ना, आप ये कर लेना, ऐसा करना, क्योंकि पता है मैं भी योग में बैठी हूं, मगर कोई पूछने आ गया, कोई जरूरी बात है, ऐसा नहीं है। तो आज हम सब साइलेंस में रहकर बोले, बोलते भी साइलेंस। बोलते कैसे साइलेंस होती है मालूम है? मम्मा ने पूछा, मालूम है? बोलते समय हमारा बुद्धि योग अपने उसी आई एम सोल, फर्स्ट प्योर सोल अथवा साइलेंस सोल, ये याद रखना है। आप देखिए कितना आत्म अभिमानी होने का, सोल कॉन्शियस बनने का हमें अभ्यास करना है। खाली योग में आके बैठे, हां बाबा मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, परम धाम की वासी हूं, बस फिर पता ही नहीं मैं आत्मा कहां गई, मन बुद्धि इधर उधर चला गया। इसी में अपने मन को एकाग्र करना। बाबा ने हमें मंत्र ही दिया है, ओम शांति। कितना लंबे समय तक मैं ओम शांति के मंत्र में टिक सकती? बोलना नहीं है ओम शांति ओम शांति ओम शांति, कोई राम राम की माला नहीं है, लेकिन ओम शांति में शांत स्वरूप आत्मा। पहले ये लंबे समय तक बैठने का अभ्यास हो, फिर कर्म करते भी हम शांत में रहने का अभ्यास कर सकते हैं। फिर से एक बार पढ़ती हूं। बोलते समय हमारा बुद्धि योग अपने उसी आई एम सोल, फर्स्ट प्योर सोल। प्योर सोल का अर्थ अर्थात अथवा साइलेंस सोल, ये याद रखना। बोलते समय हमारे में ये नॉलेज होना चाहिए, ये अंदर में फीलिंग रियलाइजेशन होनी चाहिए कि आई एम सोल इस ऑर्गन से बोलते हैं। इतनी क्लैरिटी हो तो ये अपनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे हम इसका आधार लेकर के बोलते हैं, चलो अभी आंखों का आधार लेते हैं। पहले मम्मा ने बोलने का अभ्यास कराया, अब आंखों का आधार लेते हैं, देखते हैं जिसकी जरूरत है, जिस भी ऑर्गन की जरूरत है उसका आधार लेकर के काम करो। समझा सोल कॉन्शियस क्या है? क्लियर ये फीलिंग हो, अब मैं सुन रही हूं तो आत्मा कानों द्वारा सुन रही है, सुनने के लिए ये आधार है। ऐसे आधार लेकर काम करेंगे तो क्या होगा? तो बहुत खुशी होगी, फिर कोई बुरा काम भी नहीं होगा। अच्छा, ऐसे बाप दादा और मां के मीठे मीठे बहुत अच्छे, सुन रहे हैं सब, कितना मम्मा प्यार कर रही है सबको, बहुत अच्छे, सदा साइलेंस की अनुभूति करने वाले बच्चों के प्रति याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। बोलो, ऐसी मीठी प्यारी मम्मा को भी हम बच्चों का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। महसूस करो, मम्मा हमें दृष्टि दे रही है। अच्छा, ये तो थी मम्मा की मुरली। आज मुरली के साथ एक दूसरा पार्ट आया है। जो कोई पुराने होंगे, जिन्होंने दादियों से सुना हुआ होगा, वो इसको महसूस कर सकते हैं। कैसे ऑलमाइटी बाबा संदेश देते थे एक एक के प्रति। आज ये ऑलमाइटी बाबा का मम्मा के प्रति टाइम टू टाइम दिया गया संदेश है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूं इसको, मगर फिर अपना अपना पढ़ना भी, तब समझ आएगा, जब तक भोग भी आए और संदेशी भी आए। संदेशी के तन द्वारा ऑलमाइटी पिता के उच्चारित महावाक्य। हे शिरोमणि राधे बेटी, तुम निष्दिन मेरे सम दिव्य कार्य में तत्पर हो। बहुत शुरू शुरू की ये बाबा की मुरली है, जब अभी इतना क्लियर नहीं था शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा अथवा वैष्णव शुद्ध स्वरूप हो, शुद्ध सेवा करती हो, इसलिए साक्षात मेरा स्वरूप हो। जो बच्चे अपने पिता के फुटस्टेप नहीं लेते, उन्होंने मैं बिल्कुल दूर हूं, क्योंकि बच्चा तो फिर पिता के समान अवश्य चाहिए। ये कायदा अभी स्थापन होता है, जो सत्युग त्रेता तक चलता है, वहां जैसा बाप वैसा बेटा, सत्युग त्रेता में। परंतु द्वापर कलयुग में जैसा बाप वैसे बेटे नहीं होते। अभी बच्चे को बाप समान बनने का परिश्रम करना पड़ता है, मगर वहां तो नेचुरल ऐसा कायदा बना हुआ है। जैसा बाप, कायदा कौन सा है, जैसा बाप वैसा बेटा, जो अनादि कायदा इस संगम समय पर ईश्वर पिता प्रत्यक्ष होकर स्थापन करता है। दूसरा, मधुर माली की मधुर मीठी दिव्य पुरुषार्थी बेटी। देखो क्या टाइटल मिला है मम्मा को, फिर से सुनिए। मधुर माली की मधुर मीठी दिव्य पुरुषार्थी बेटी, अब तुझे बहुत रमणीक, शिव बाबा डायरेक्शन दे रहा है मम्मा को, अब तुझे बहुत रमणीक स्वीटनेस बनना और बनाना है। अभी वर्ल्ड सॉवरेंटी की चाबी, विश्व की राजधानी की चाबी सेकंड में प्राप्त करना और कराना तुम्हारे हाथ में है। शिव बाबा ने कैसे पावर दिया मम्मा को, देखो। ऑलमाइटी जो हर एक जीव प्राणी का मालिक है, वो जब प्रैक्टिकल में इस कर्म क्षेत्र पर आया है, तब सारी सृष्टि हैप्पी हाउस बन जाती है। इस समय वही जीव प्राणियों का मालिक अव्यक्त रीति से सृष्टि को चला रहा है, लेकिन जब वह प्रत्यक्ष रूप में देहधारी बन मालिकपन से कर्म क्षेत्र पर आता है, तब सत्युग त्रेता के समय सभी जीव प्राणी सुखी बन जाते हैं। आप देख रहे हैं कैसे मामा को बाबा ने शिक्षा दी है, कैसे शिव बाबा आता है और कैसे हमें बनाता है। लेकिन जब प्रत्यक्ष रूप में देहधारी बन मालिकपन से कर्म क्षेत्र पर आता है, तब सत्युग त्रेता के समय सभी जीव प्राणी सुखी बन जाते हैं। वहां सच की दरबार खुली रहती है। जिसने ईश्वरीय सुख प्राप्त करने अर्थ पुरुषार्थ किया है, उन्हों को वहां सदा के लिए सुख प्राप्त हो जाता है। अंडरलाइन कर लीजिए, ईश्वरीय सुख प्राप्त करने का भी पुरुषार्थ करना है। सूक्ष्म में आज हम अपने को चेक करें, मैं कितना समय सुखी हूं। हम सुखी रहते हैं, यूं तो कहेंगे मधुबन में तो वैसे भी मौज है, चाहे रहने वाले हैं चाहे आए हुए हैं, यहां तो दुख की कोई बात ही नहीं है। लेकिन अंदर से देखें, मैं सुखी हूं या मैं तेरी मेरी इसकी उसी में लग के और मूड मेरा बदल रहा है। वहां सच की दरबार खुली रहती है। जिसने ईश्वरीय सुख प्राप्त करने अर्थ पुरुषार्थ किया है, उन्हों को वहां सदा के लिए सुख प्राप्त हो जाता है। इस समय सभी जीव प्राणियों को सुख का दान नहीं मिलता है, पुरुषार्थ ही प्रारब्ध को खींचता है। जिनों का ईश्वर से योग है, उन्हों को ईश्वर द्वारा संपूर्ण सुख का दान मिल जाता है। देखिए, सुख प्राप्त करने की भी कितनी सूक्ष्म विधि है। तो ये भिन्न भिन्न पॉइंट्स हैं। आज क्योंकि मम्मा डे है, मम्मा का भोग लगेगा, संदेश आएगा, मैंने आपको केवल दो पॉइंट सुनाए हैं और 7 पॉइंट हैं, बाकी शेष रहे फिर कल सुनाएंगे मुरली के साथ। तो अभी सुनिए मम्मा का याद प्यार फिर से। ये जो बाबा का पाठ चला है, उस समय पीयू और पिया ऐसे दो शब्दों का प्रयोग होता था। कैसे उसने याद दी है। ओहो होली हृदय कमल, सुनिए सब ध्यान से, लिख लीजिए चाहे, हृदय कमल होली हस्त कमल, होली नैन कमल बेटी राधे, तेरी सारी काया पलट कमल फूल सम कोमल कंचन बन गई है। परंतु पहले जब सोल कंचन बनती है, तब सारा तन कंचन प्योर बन जाता है। जिस होली कोमल तन में ही अति कशिश भरी हुई है, तुम अपने परमेश्वर पिता द्वारा अज्ञान तपत को बुझाए, ज्ञान तेज को जगाए, अति शीतल रूप बन गई हो। खुद शीतल रूप बन फिर अन्य हम जिन्स को भी ऐसी सच्ची शीतलता दान देने अर्थ इस सुहावने संगम समय पर निमित्त बनी हुई हो। तुम्हारे जड़ चित्रों द्वारा भी सारे दुनिया को शीतलता शांति का दान मिलता रहता है। अभी तुम सारी सृष्टि को सेल्वेशन में लाए, अंत में अपना दिव्य तेज दिखाए, नए वैकुंठ गोल्डन गुलशन में जाकर विश्राम करेंगी। अच्छा वरदान, बाबा शब्द की चाबी से सर्व खजाने प्राप्त करने वाली भाग्यवान आत्मा भव। चाहे और कुछ भी ज्ञान के विस्तार को जान नहीं सकते व सुना नहीं सकते, लेकिन एक शब्द बाबा दिल से माना और दिल से औरों को सुनाया तो विशेष आत्मा बन गए। दुनिया के आगे महान आत्मा के स्वरूप में गायन योग्य बन गए, क्योंकि एक बाबा शब्द सर्व खजानों की व भाग्य की चाबी है। नोट कर लीजिए, भाग्य की खजानों की चाबी एक बाबा शब्द। चाबी लगाने की विधि है, लगाएं कैसे? दिल से जानना और मानना, दिल से कहो बाबा तो खजाना सदा हाजिर है। स्लोगन, बाप दादा से स्नेह है तो क्या प्रूफ? तो स्नेह में पुराने जहान को, स्नेह में पुराने जहान को कुर्बान कर दो। पुरानी दुनिया, पुरानी बातें, पुराना व्यवहार, सब फिनिश, कुर्बान कर दो। ओम शांति। सुनी मीठी प्यारी मम्मा की मुरली, अव्यक्त इशारा। कोई भी कार्य करते बाप की याद में लवलीन रहो। कर्म योगी अर्थात याद में कर्म करते हुए कर्म करने वाला, वह सदा कर्म बंधन मुक्त रहता है। उसे अनुभव होता है कि कर्म नहीं कर रहे हैं लेकिन खेल कर रहे हैं। उन्हें किसी भी प्रकार का बोझ व थकावट महसूस नहीं होगी। कर्म योगी अर्थात कर्म को खेल की रीति से न्यारे होकर करने वाले, वह कर्म इंद्रियों द्वारा कार्य करते बाप के प्यार में लवलीन रहने के कारण बंधन मुक्त बन जाते हैं। आज मम्मा ने कहा ना, अलग अलग अभ्यास करो, मैं आत्मा अलग, देह अलग, यही अव्यक्त इशारा है। बस मैं कौन? कार्य करने वाली आत्मा और मेरा साथी बाबा। ओम शांति।
ओम शांति। आज तो हम सबके प्यारे